किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। ये कहानी बहुत से मुद्दे उठाती है, मर्द और औरत के रिश्ते को लेकर, क्योंकि इसमें दो यंग मैरिड कपल्स की आपसी रिलेशनशिप का जिक्र है और सामाजिक भेदभाव यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी। किस तरह बहुत आसानी से हम उनका तिरस्कार कर देते हैं जो हमारे ओपिनियन में इन्फीरियर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अलग परिवेश अलग बैकग्राउंड से हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी की लेखिका के बारे में, जो एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये कहानी जीत मूलतः एक उड़िया कहानी है जिसकी लेखिका हैं नंदिनी सतपथी जी, जो एक उत्कृष्ट उड़िया साहित्यकार तो थी ही, पर साथ ही जिन्होंने 8 साल की नन्ही सी उम्र से फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। ये एक सफल राजनेता, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी रही। 1972 से 1976 तक ये उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर रही। तो आज सुनिए हमारे देश की एक गरिमामय लेखिका नंदिनी सतपथी जी द्वारा लिखी कहानी जीत। एक बार फिर हिंदी अनुवाद कर इस कहानी को हम तक पहुंचाया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने। वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। अगल बगल दो घर। अगल बगल ही क्यों, बल्कि एक ही घर के दो कोठरी नुमा कमरे, दोनों का एक ही आंगन, एक ही बाथरूम, सटे सटे दो छोटे छोटे रसोई घर। इस एक घर को दो लोगों ने किराए पर लिया है, दो परिवार, कुल मिलाकर 4 व्यक्ति, फिर भी मन का मेल नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, शंकर सोचता था और जितना ही सोचता था उतना ही उसका सर दर्द बढ़ जाता। इस हाल में गुजारा होना मुश्किल है, 85% उसका मासिक वेतन है। सारा कटक छानने पर बहुत मुश्किल से उसने ये घर पाया है, सिर्फ 2 कोठरी नुमा कमरे, भाड़ा 40 रुपए। 85 रुपए महीने की आमदनी में से 40 रुपए का भाड़ा दिया जा सकता है? शंकर की इसी उहापोह में सहायता करने के लिए उसका दोस्त रॉबर्ट आगे बढ़ाया। घर में तुम और मैं साथ रहेंगे, आधा भाड़ा मैं दूंगा, क्या कहते हो बोलो? रॉबर्ट के स्वर में आशा और साहस का संचार पाकर शंकर आनंद से फूला नहीं समाया। घोर निराशा में भी आशा की किरण जगमगा उठी। पूछते क्या हो, कल 1 तारीख है, तुम साथ साथ सामान लेकर आ जाओ। रॉबर्ट आया, मेरी भी आई। उनके छोटे से संसार के थोड़े बहुत सामान के लिए 1 कोठरी पर्याप्त है। मेरी के कर्म कुशल हाथ के स्पर्श से 2 घंटे में ही घर का रूप बदल गया। सुशीला की प्रतीक्षा ना कर घर आंगन सभी साफ कर दिए। डरते डरते शंकर ने कहा, सुशीला तुम भी जरा हाथ लगाओ, बेचारी अकेली कितना खट रही है, हम भी तो इसी घर द्वार में सुख भोगेंगे। बस इतना ही कहना था कि सुशीला चिल्ला उठी,
आहा कितना दर्द, ये कंधनी काम नहीं करेगी तो क्या मैं काम करूंगी? देखती हूँ तुम्हारा साहस बहुत बढ़ गया है, इसको देखते ही तो ये हाल, और यहाँ रहने पर क्या ना करोगे कौन जाने।
शंकर ने सुशीला के मुंह पर हाथ रख दिया। उसी समय उसे तूफान की सूचना मिल गई और अधिक बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो लज्जा और विरक्ति से भर उठा। मेरी और रॉबर्ट आदिवासी हैं, सच कहती है सुशीला, पादरी ने उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार कराया, शिक्षा भी दी, इन लोगों का नया जन्म हुआ, नाम भी बदल गया, किंतु क्या इस आर्य सुशीला की तुलना मेरी के साथ की जा सकती है? मेरी में सुरुचि और कर्म कुशलता के दर्शन होते हैं, मेरी का स्वतंत्र आचार विचार है। वन पहाड़ों की रहने वाली वो लड़की है। खुले आकाश के नीचे, खुले वायुमंडल में उछलते कूदते उसका बचपन बीता। वो शहर की जटिलता के बीच अटकी हुई है, फिर भी उसकी आदत नहीं बदली। लज्जावश माथे पर कपड़ा रखने की तो उसने सपने में भी कल्पना ना की होगी, बल्कि लोगों के साथ अच्छी तरह बातचीत ना करना ही उसके हिसाब से अभद्रता है। पति का, घर का सब छोटा बड़ा काम वो कमर कस के अपने हाथों से करती। शंकर उसका वही कर्म निरत हाथ मुंह देखते रहना चाहता था। उसमें थकान बिल्कुल नहीं, मानो वो हमेशा यौवन और स्फूर्ति से भरी हुई है। सुशीला शंकर को भूल समझती।
लाज शर्म छोड़कर इतनी देर से क्या देख रहे हो? अगर ऐसा करोगे तो मैं आज ही घर छोड़कर चली जाऊंगी।
क्या हुआ सुशीला? यदि मनुष्य को मनुष्य देखे तो इसमें पाप है, क्यों कर तुम झूठ मूठ शोर मचाती हो? शंकर का ये उत्तर सुशीला को शांत करने के बदले और उत्तेजित कर गया।
हाँ हाँ, रखो अपनी भलमनसाहत, मुझे पाप पुण्य की परिभाषा मत सिखाओ। भला चाहते हो तो घर के भीतर चुप बैठो।
शंकर इसका क्या उत्तर दे? चुप हो जाना ही अच्छा समझता। सुशीला ने बड़े संकोच में डाल दिया है। शंकर मन ही मन विरक्त होता, किंतु कुछ नहीं कह पाता। वो जानता है कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही सुशीला अश्लील भाषा में उसका अपमान कर देगी। रॉबर्ट और मेरी जानेंगे, बात बढ़ जाएगी, शर्म से वो पानी पानी हो जाएगा। पर सुशीला ने सचमुच उस दिन संकोच में डाल दिया था। शंकर को 2 दिनों से बुखार था। कमरे में आकर मेरी ने उसकी तबीयत का हाल पूछा। हाथ को माथे से लगाकर देह की गर्मी का अनुमान ले रही थी। सुशीला आंधी के वेग से घर के भीतर घुसी, फिर चौखट पर खड़ी हो गई।
वाह वाह, अच्छी लीला लगाई है। बिल्ली कितने दिन आंख बंद करके दूध पीती रहेगी? एक दिन पकड़ी जाएगी अवश्य। इसीलिए इतना पाप पुण्य सिखाते थे? ये लाज शर्म घोल कर सब पी गई। तेरा स्वामी तो घर में है, तू यहाँ मेरी चीज में हाथ बटाने क्यों आई है?
सुशीला की चिल्लाहट से मोहल्ला कांप उठा। शंकर के लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो गया। तेज बुखार और शर्म के मारे वो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने तुरंत उठकर सुशीला के गाल पर थप्पड़ लगा दिया।
बंद करो सुशीला।
थरथराते हुए पुनः खाट पर गिर गया। और उधर मेरी मुंह नीचा कर धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़ी। पर सुशीला चुप नहीं रही, उसका गला और भी तेज हो उठा।
अरे मारते हैं, पराई औरत को लेकर तमाशा करते हैं, कहने पर मार, आज मैं कुएं में गिर पड़ूंगी, मैं और सहन नहीं कर सकती।
मोहल्ले के आधे लोग आंगन में आकर जमा हो गए। कानाफूसी शुरू हो गई। बाहर किसी बस्ती वाले ने कहा, चलो चलो ये तो घर में ही कृष्ण लीला है, तुम देखोगे क्या? और किसी दूसरे ने कहा,
आजकल भले आदमी को भी घर में शरण देना मुश्किल है।
शंकर की इच्छा हुई उठकर एक एक कर सबों के सिर को लाठी से 2 भाग कर दे। दांत पर दांत बैठाकर शंकर बाहर आकर हाथ जोड़ खड़ा हुआ। आप लोग जाइए, कष्ट कर यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटा मोटा घरेलू झगड़ा है। शंकर घर के भीतर आया, सुशीला बरामदे में सिसकती रही। लौटते लौटते किसी ने कहा,
अरे घरेलू झगड़ा है तो मोहल्ला क्यों कपाता है?
मेरी किवाड़ बंद कर घर में रही। उससे कौन सी भूल हो गई वो समझ नहीं पाई। फिर भी उसी के कारण पति पत्नी में झगड़ा हुआ ये समझ वो अत्यंत लज्जित हुई। रॉबर्ट किसी भी समय ऑफिस से लौट सकता है, सोच विचार का समय नहीं। नाश्ता तैयार करने में जुट गई। एक दिन सुशीला के घर से पकवान आए। शंकर ने कहा, इतनी मिठाइयां खा जा, इन सब का क्या होगा सुशीला, मेरी के घर में भी कुछ कुछ दे दो।
भला उस भिकमंगी को क्यों दूंगी, सड़ जाए मेरी चीजें, गड्ढे में डाल दूंगी।
छी छी, तुमने इतना भी नहीं सीखा सुशीला, गांव में तुमने नहीं देखा किस तरह एक के घर से अच्छी चीजें आने पर वो दूसरों के घर कुछ कुछ भेजकर खुश होते हैं, यही हमारी संस्कृति है। सुशीला संस्कृति का अर्थ नहीं समझती, ये सब उसके लिए अर्थहीन है। उसने एक ही बात समझी है, मेरी की नजर उसके पति पर है, इसीलिए वो खूब सतर्क भाव से चलती है। शंकर उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो सुशीला, हम अकेले ठहरे तुम ऐसी झगड़ालू हो, सुख दुख के समय कौन सहायक होगा, आस पड़ोस से मिलजुल कर रहना अच्छा है।
वो कैसे पड़ोसी, मुसीबत पड़ने पर क्या उसे ही बुलाने जाऊंगी?
ये सुनकर शंकर चुप रहा। समय भागता गया, सुशीला को बदलने का सामर्थ्य अब शंकर में नहीं रहा। घरेलू जीवन उसके लिए भार स्वरूप बन गया। घर लौटने पर रॉबर्ट जिस समय मेरी के साथ बाग बकरी खेल में लिप्त हो जाता, उस समय उनकी हंसी खुशी शंकर के कान में पड़ती। सुशीला को वो देखता, मुंह में पान डालकर खाट पर सो रहती। खेलोगी सुशीला?
कैसी स्त्री प्रकृति के पुरुष हो तुम, मेरी को खेलते देख बाघ बकरी खेलने का मन होता है।
सुशीला करवट बदल उसकी ओर पीट कर सो जाती। शंकर धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़ता। उद्देश्यहीन भाव से रात 11 बजे तक बाजार में घूम घाम कर लौट आता। कुछ और दिन बीते, सुशीला को आज प्रसव पीड़ा या लेबर पेन हो रहा है। शंकर को कुछ नहीं सूझ रहा है, किसी को बुलाकर कुछ करना पड़ेगा, ये उसकी समझ में नहीं आता। 2 बजे रात में कौन आएगा, वो किसके पास सुशीला को छोड़कर जाए? शंकर ने मेरी को पुकारा, वो सुनकर दौड़ी आई।
आप जाइए, नर्स को बुलाइए, मैं सुशीला के पास हूं।
शंकर चला गया, सुशीला का मुंह नहीं खुला। मेरी उसके पास बैठी है, हाथ पैर दबा रही है। धीरे धीरे सुशीला का दर्द बढ़ता गया। शंकर अभी तक नहीं लौटा, सुशीला दर्द से चिल्ला उठी। 2 घंटे बाद नर्स को साथ लेकर दरवाजे पर शंकर आ खड़ा हुआ। पर ये क्या, मेरी के हाथ में नवजात शिशु?
जल्दी से अपने बच्चे को लीजिए शंकर बाबू, नहीं तो सुशीला फिर से गुस्सा होकर गाली गलौज करेगी।
शंकर मेरी के पीछे पीछे कमरे में आया। खाट के ऊपर सुशीला सोई है, मुस्कुरा रही है। उसी के पास बच्चे को रख मेरी वहां से चली जा रही थी। अचानक उसके आंचल को खींचते हुए सुशीला ने शंकर से कहा,
तुम तो अच्छे आदमी ठहरे, मेरी बहन ना होती तो आज मैं मर गई होती।
शंकर ने एक पल मेरी की ओर और दूसरे पल सुशीला की ओर देखा, धीरे धीरे कहा,
सुशीला, अंत में तुमने मेरी बहन की जीत स्वीकार की।
आप सुन रहे थे कहानी जीत, जिसको उड़िया में लिखा नंदिनी सतपथी जी ने, हिंदी में अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने, और वाचन था मेरा यानी निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।